मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। AFEIS के आज 27 अप्रैल 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज सबसे पहले मैं आप सबको एक सूचना देना चाहूंगा और सूचना यह है कि AFE ने यानी कि एकेडमी फॉर एक्सीलेंस ने एक YouTube पर मेरा वीडियो डाला है इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर। इकोनॉमिक सर्वे यानी कि 2019 के इकोनॉमिक सर्वे की जो रिपोर्ट आई थी जनवरी के लास्ट में इसी साल, उसका एक वीडियो डाला गया है। ये आप लोगों की सूचना के लिए है। लेकिन यहां इससे एक और भी ज्यादा महत्वपूर्ण सूचना है जो इसी से जुड़ी हुई है। फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा, चूंकि आप मेरे प्रिय श्रोता हैं, आप मेरा डेली ऑडियो लेक्चर सुनते हैं और एक विश्वास के साथ सुनते हैं, तो मैं चाहूंगा कि इकोनॉमिक सर्वे को जब आप सुने और जब आप उसे देखें तो थोड़े एक और डायमेंशन में उसे समझने की कोशिश करें। देखिए, वैसे आप सुन लीजिए, उसमें कुछ बातें बताई गई हैं, उन्हें आप नोट कर लेंगे, उन्हें आप याद कर लेंगे और उस पर अपना फैसला दे देंगे कि यार ये तो बेकार है, यार ये तो अच्छा है, यार ठीक ठाक ही है, या ये तो अधूरा है, इसमें तो पूरी बातें बताई नहीं गई हैं। इस तरह के ढेर सारे विचार आपके दिमाग में आएंगे और किसी भी श्रोता और जो पाठक होता है उसके दिमाग में ये बात आती ही आती है, इसमें कोई अजूबी बात नहीं है। लेकिन यहां मैं थोड़ा सा एक सतर्कता बरतने की बात कहना चाहूंगा जो बहुत जरूरी है, और इसका संबंध केवल इकोनॉमिक सर्वे से नहीं है, मेरी इस वीडियो से ही नहीं है, बल्कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में आप जो कुछ भी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन सब के बारे में है। दोस्तों, जब भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं या किसी भी टॉपिक के बारे में सुनते हैं, जैसे कि मैं यहां इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बात कर रहा हूं, तो जो सबसे बड़ी चुनौती है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, या कह लीजिए कि कई चुनौतियों में एक जो बड़ी चुनौती है, वह इस बात की होती है कि उसमें से आप अपने लायक निकाल क्या पाते हैं। और उसमें से निकाल क्या पाते हैं का मतलब यह नहीं कि इकोनॉमिक सर्वे से आप क्या निकाल पा रहे हैं, नॉट एट ऑल। अगर मैं इकोनॉमिक सर्वे पर आपको कोई वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं तो ये जिम्मेदारी मेरी है कि जो इकोनॉमिक सर्वे की इतनी बड़ी रिपोर्ट आई हुई है उसमें से मैं आपके हिसाब से निकाल करके आपको क्या देता हूं, मतलब ये मेरी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी यह है कि जो भी चीजें आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं, केवल मैं अपने ही संदर्भ में ये बात नहीं कह रहा हूं, एकेडमी के ही संदर्भ में बात नहीं कर रहा हूं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, एक से एक अच्छी चीजें हैं, खराब चीजें हैं, मीडियम स्तर की चीजें हैं। मेरा अनुरोध आप सबसे सिर्फ इतना है कि आप उन सभी चीजों का मूल्यांकन अपने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से करें, रिक्वायरमेंट के हिसाब से करें। जैसे मेरी इस इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो को सुनने के बाद आपको ऐसा लग सकता है कि इसमें तो ये बात नहीं बताई गई, इसमें तो ये बातें नहीं बताई गई, इसमें तो ये भी छोड़ दी गई हैं, और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो सही है, लेकिन इसका जस्टिफिकेशन क्या है? इसका जस्टिफिकेशन यह है कि जो बातें छोड़ी गई हैं, इनफैक्ट वो छोड़ ही दी जानी चाहिए थी, क्योंकि वो आपके काम के नहीं है, वो दूसरों के काम के हैं। और अगर आप इसे जांचना पर रखना चाहते हैं तो मैं आपको एक कसौटी बता रहा हूं, वो ये है कि पिछले आप 4-5 साल के प्री के क्वेश्चन पेपर उठा लें, आप मेंस के क्वेश्चन पेपर उठा लें, और उठाने के बाद ये जानने की कोशिश करें कि इकोनॉमिक सर्वे से क्या पूछा गया है, पहली बात, और दूसरी बात कि जो इकोनॉमिक सर्वे है वो दूसरे क्वेश्चंस के आंसर में हमारी किस तरीके से मदद कर सकता है। ये केवल दो कसौटियां आप रखें और इन दोनों कसौटियों के आधार पर फिर इस वीडियो लेक्चर को सुने। मुझे लगता है कि इन दोनों कसौटियों के आधार पर सभी लेक्चर्स आपको सुनने चाहिए, तब जाकर के आप इस बात का सही निर्णय ले पाएंगे कि यह मेरे लिए कितना उपयोगी है। तो दोस्तों, यह बात आप जरूर करें, यह काम आप जरूर करें। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के तहत मैं आपसे जो पिछले मंडे टेस्ट सीरीज कैसे सॉल्व करनी चाहिए उसके बारे में बातें कर रहा था, इसी विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन पहले कुछ दूसरी बातों को, आइए दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने जब पंचायतों से बात की थी, मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट की थी कि आप वो लेक्चर जरूर सुने, प्रधानमंत्री जी के संबोधन को, उसमें उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है जो आप यूं कह लीजिए कि एक टर्निंग पॉइंट शो कर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने बार बार इस बात को दोहराया, गांव की आत्मनिर्भरता की बात, कि हमारे गांव को आत्मनिर्भर बनना होगा। अब आपको लगेगा कि ये तो सामान्य सी बात है, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात हो गई, लेकिन दोस्तों, वो किस दौर में ये बात कह रहे हैं, कोरोना 19 जो अभी कोविड 19 है उस दौर में ये बात कह रहे हैं। सीधी सी बात है कि हमारे गांव अगर आत्मनिर्भर हो जाते हैं तो जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो सिचुएशन है वो अपने आप आ जाएगी, क्योंकि आपको फिर कहीं जाना ही नहीं है। गांव वाले आपस में ही अपनी जरूरतें की चीजें पूरी कर लेंगे तो उन्हें शहर नहीं आना पड़ेगा, ठीक है चलिए। और शहर अगर अपनी जरूरतें की चीजें पूरी कर लें तो उन्हें दूसरे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। और इस तरीके से अगर राष्ट्र अपनी जरूरतों की चीजें पूरी कर ले तो उसे दूसरे राष्ट्रों के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो आप देखिए कि जो स्वनिर्भरता की बात आ रही है यहां पर फिलोसॉफिकली आपको जो अभी आपको वैश्वीकरण दिखाई दे रहा है, इस वैश्वीकरण के विरुद्ध जाती हुई मालूम पड़ रही आत्मनिर्भरता की बात। क्योंकि जो बात हम अपने गांव के बारे में कह सकते हैं वही बात हम अपने राष्ट्र के बारे में कर सकते हैं, और कुछ राष्ट्रों ने कहना शुरू कर दिया है। अमेरिका के ट्रंप जो राष्ट्रपति हैं वो तो बहुत समय से यही बात कह रहे हैं कि अमेरिका अमेरिकियों के लिए। तो दोस्तों यह जो छोटी सी बात आपको दिखाई दे रही, देखिए किस तरीके से सैद्धांतिक रूप से किस ओर संकेत कर रही है, आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना होगा। फ्रेंड्स कोविड 19 का जो असर है यूरोप में आप देखिए कि थोड़ा थोड़ा कम पड़ने लगा है, और इटली फ्रांस स्पेन इन सब ने अपने यहाँ अब जो लॉकडाउन की जो डेट है वो खत्म करने की घोषणा कर दी है। बहुत जल्दी ये सब आप क्यों कह लीजिए कि मई के फर्स्ट वीक तक ये सब के सब देश अपने को ओपन कर देंगे, और इनके भी जो लॉकडाउन का पीरियड रहा है वो लगभग 40-50 दिन का ही रहा है। तो आपको सांत्वना देने के लिए मैं ये बात केवल बता रहा हूँ, सांत्वना देने के लिए मतलब ये जो सही बात है वो बता रहा हूँ, तो आपको भी थोड़ी सी तसल्ली होगी कि नहीं हमारे यहाँ भी लॉकडाउन लगभग आप कह लीजिए 40-50 दिन के अंदर खुल जाएगा। इस बीच में आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा हर्ड इम्यूनिटी। अब यह कहा जाने लगा है कि जो कोरोना वायरस है आप इसे पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते, हाँ हमें अपनी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करनी पड़ेगी, हम खुद कर लेंगे और फिर वो जो हमारी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी तो हम कोरोना वायरस के साथ जीना सीख जाएंगे, हम उसी के साथ रहने लगेंगे जैसे बहुत सारे वायरस के साथ हम ऑलरेडी रह ही रहे हैं। तो देखिए जो हर्ड है, हर्ड का मतलब होता है झुंड, खासकर जो पशुओं के जो झुंड होते हैं उनको हर्ड कहा जाता है, और इम्यूनिटी का मालूम है आपको कि प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि झुंड की प्रतिरोधक क्षमता। तो झुंड की जगह आप इसे सामूहिक कह लीजिए कि सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता, रोग का प्रतिरोध करने की सामूहिक क्षमता। देखिए कि जब हम किसी के साथ रहने लगते हैं तो हमारी बॉडी में इतना इंटेलिजेंसिया है, ये इतना होशियार है, इतना समझदार है कि उस रोग का विरोध करने की क्षमता ये अपने आप में धीरे धीरे डेवलप करने लगता है। तो हमारे अंदर कोरोना वायरस जब आने लगेगा तो हमारे शरीर के जो सेल्स हैं वो उसका विरोध करेंगे, प्रतिरोध करेंगे, और इसी दौर में वो ताकतवर बन जाएंगे, और इतने ताकतवर बन जाएंगे कि फिर वो कोरोना वायरस आएगा लगेगा भी लेकिन वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। और जिस दिन हमारी ये क्षमता विकसित हो जाएगी उस दिन हम कहेंगे कि हमारी इम्यूनिटी जो हर्ड इम्यूनिटी है डेवलप हो गई। अभी इंडिविजुअल इम्यूनिटी डेवलप है, सबको तो नहीं हो रहा है, और आप देखिए कि युवा वर्ग को तो खासकर नहीं ही हो रहा है, कब बहुत कम हो रहा है, ऐसा नहीं कहना चाहिए कि नहीं ही हो रहा है लेकिन कम हो रहा है। अखबारों में भी आप पढ़ते होंगे कि जो वृद्ध वर्ग है जो 60 वर्ष से अधिक की आयु के हैं, चूंकि उनकी बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर है वो थोड़ी सी अपेक्षाकृत कमजोर हो जाती है तो उनको ये कोरोना वायरस ज्यादा तंग कर रहा है। तो इसे कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी, आपके सिर्फ जानकारी के लिए थोड़ी सी बातें मैं आपको बता रहा हूं। फिर चाहिए बताता हूं आज के मुख्य विषय पर, टेस्ट सीरीज से आप किस तरह से अपनी क्षमता का निर्माण करेंगे। देखिए टेस्ट सीरीज जैसा शायद मुझे याद है कि मैंने मंडे को भी एक बात कही थी कि आपके केवल मूल्यांकन के लिए नहीं है, मूल्यांकन के लिए है लेकिन केवल मूल्यांकन के लिए नहीं है, बल्कि जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं तो मान करके चलिए कि आप अपनी कैपेसिटी की भी बिल्डिंग कर रहे हैं, यानी कि अपनी क्षमता का निर्माण कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं प्री एग्जामिनेशन की तैयारी भी कर रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि आप केवल आत्मसंतोष के लिए ये बात कह रहे हैं कि देखें मेरी कितनी तैयारी है, मुझे कितने मार्क्स मिलते हैं, नॉट एट ऑल। अगर आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपने 10 टेस्ट सीरीज सॉल्व किए, टेस्ट सीरीज सॉल्व करने से पहले जो आपका स्कोर होता मान लीजिए कि वो 50% होता है ना, मैं काल्पनिक स्कोर दे रहा हूं, 50% होता। अब जबकि आप 10 टेस्ट सीरीज सॉल्व कर चुके हैं तो मेरा ये मानना है कि आपकी क्षमता में इतना विकास हो जाना चाहिए कि आपका जो स्कोर है वो 55 से 60 तक पहुंच जाए बिना सिलेबस को पढ़े, बिना किसी रिवीजन के। मैं नहीं कह रहा हूं कि उसके बाद फिर आप रिवीजन करेंगे, आप सिलेबस पढ़ेंगे, फिर से तैयारी करेंगे तब आप इतने तक पहुंचेंगे, नहीं। टेस्ट सीरीज को सॉल्व करते करते ही आपके अंदर ये क्षमता आ जाए, इतनी कैपेसिटी विकसित हो जानी चाहिए कि आपका जो स्कोर अभी 50 पे रुका हुआ था अपने आप जंप करके 55 टू 60 पहुंच जाए। हो सकता है कि आपको मेरी यह बात काल्पनिक लगे, यूटोपिया लगे बिल्कुल, कि अरे अरे ऐसा होता है क्या, जो हम जानते हैं उसी का तो आंसर दे पाएंगे। नॉट एट ऑल दोस्तों, जो हमारे जो टेस्ट होते हैं, याद रखिए टेस्ट एक बहुत बड़ी चीज होती है, वो हमारे केवल मूल्यांकन की कसौटी नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। उदाहरण के तौर पर जब आप 10 टेस्ट सही मायने में एग्जामिनेशन के हॉल में बैठ करके जिस तरह आप एग्जाम देंगे उसी पैटर्न पर सॉल्व करते हैं तो आपका एक मेंटल एनवायरमेंट बन जाता है, एक मानसिक वातावरण बन जाता है, और यह मानसिक वातावरण भले ही आप उस तरह से महसूस न करें लेकिन वहां बहुत ज्यादा मदद करता है। आप किसी क्रिकेट मैच वाले प्लेयर से पूछ करके देखिए, आज दूसरे भी मैचेस जो खेलते हैं वो एक दिन जाकर के ग्राउंड में देख लेते हैं, चक्कर लगा लेते हैं और थोड़ा बहुत अभ्यास भी कर लेते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? ताकि उनका मानसिक वातावरण बन जाए। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि सचिन तेंदुलकर जी से जब एक बार पूछा गया था इसी के बारे में, उनके मैच प्रिपरेशन के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि जिस मैच को मैं मैदान पर खेलता हूं उस मैच को मैदान पर खेलने से पहले मैं एक बार अपने दिमाग में खेल चुका होता हूं। वो क्या बात कह रहे हैं, और आप जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। तो मैं अपनी मानसिक वातावरण उस तरीके से बना चुका होता हूं कि मुझे मैच कैसे खेलना है। उससे आपकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जिन चीजों का आप सामना करने जा रहे हैं वो चीजें आपको बहुत ही सामान्य सी लगने लगती हैं। सामान्य से इस मायने में कि आपको लगता है कि अरे ये तो मेरा जाना पहचाना है। इससे आपका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है। और मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा रोल जो टेस्ट सीरीज का है सॉल्व करने का, वो आपके मानसिक वातावरण के निर्माण करने का ही है। दोस्तों इसी से जुड़े हुए अभी 5-6 बातें और हैं, लेकिन वक्त इतना नहीं है कि उन बातों को मैं विस्तार के साथ विश्लेषित कर सकूंगा, तो इसके लिए अब थोड़ा सा मैं आप लोग गैप चाहूंगा बाद में जब वक्त मिलेगा, नहीं तो सोमवार को तो हम लोग इस तरह के टॉपिक पर बात करते ही हैं। मैं आपसे इस विषय पर और आगे चर्चा करूंगा। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। आज खासकर एक क्लिपिंग्स की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, वो बिजनेस स्टैंडर्ड की है, जिसका शीर्षक है शक्तिशाली केंद्र की वापसी का दौर। शेखर गुप्ता जी ने इसे लिखा है, जो बहुत ही अच्छा लिखते हैं, बहुत ही खूबसूरत लिखते हैं, है ना, बहुत ही हमारे देश के बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही विश्वसनीय जर्नलिस्ट में है शेखर गुप्ता। उनका आर्टिकल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, और खासकर ये केंद्र और राज्यों के आपसी संबंधों को लेकर के, जिसे हम फेडरलिज्म कहते हैं, और आप जानते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन का है, इसीलिए मैं ये आर्टिकल आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। इसे आप सब ध्यान से देखिएगा, और अगर आपको कहीं महत्वपूर्ण कोई बात लगती है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उन्हें नोट भी कर लें। तो दोस्तों अब मैं आता हूं ईमेल पर। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, अभिषेक, अविनाश, माही गुप्ता बरेली उत्तर प्रदेश से, दीपक सोनीपत हरियाणा से, वीरेंद्र कुशवाहा, सुयश तिर्की, नूरी परवीन, अनूप राज, दीपा धर, रंजन कुमारी सोनी, शरफत अली, विनय भान, सूरज मल्होत्रा और अलीशा बानो कैमूर मध्य प्रदेश से, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। नमस्कार।